ओम शांति। आज गुजरात एवं भारत भर से आए हुए ब्राह्मण परिवार के बीच आदरणीय उर्मिला दीदी जी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप 1981 से बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में उतारे हुए हैं और 1985 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। अनेक आध्यात्मिक अभियानों के द्वारा आपने भारत के विविध प्रांतों में एवं नेपाल में भी आपने ईश्वरीय सेवाओं में आपका योगदान दिया है। अफ्रीका महाद्वीप में भी आपने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। ब्रह्मा कुमारीज की मासिक पत्रिका ज्ञानामृत की आप संपादिका हैं। आपने अनेक जगहों पर आपके आध्यात्मिक प्रवचनों का लाभ दिया हुआ है। आप बहुत अच्छी लेखिका हैं और आपके लेख अनेक पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। आपके लेख परिवर्तनकारी होते हैं। रिफ्रेशर कोर्स एवं विभिन्न विभागों के ट्रेनिंग में भी आपका बहुत अच्छा योगदान रहता है। आज हमारे बीच आप उपस्थित हैं अपना आध्यात्मिक अनुभवों का लाभ देने के लिए। अमृत संचय करके एक किताब है जिसके 3 भाग हैं जो आपने तैयार किए हैं। तो ऐसी ज्ञान के धनी आदरणीय उर्मिला दीदी जी हमारे बीच हैं और आज आपका विषय है स्वदर्शन चक्रधारी से विश्व चक्रवर्ती महाराजा। तो इस विषय पर आप हमें गाइडेंस देंगे, हमें समझाएंगे आदरणीय उर्मिला दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारा आज का विषय बहुत ही सुंदर है, स्वदर्शन चक्रधारी से विश्व चक्रवर्ती महाराजा। प्यारे बाबा की 20 मार्च 69 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है कि 7 बातें जीवन में धारण करनी है और 7 बातें छोड़नी है। तो धारण करने वाली और छोड़ने वाली बातें कौन कौन सी है? छोड़ने वाली हैं 5 विकार और 7 में आलस्य और भय, और धारण करने वाली 7 बातें, पहली बात स्वस्वरूप, दूसरा स्वधर्म, तीसरा स्वदेश, चौथा सुकर्म, 5वां श्रेष्ठ लक्षण, 6ठा श्रेष्ठ लक्ष्य और 7वां स्वदर्शन चक्रधारी। तो बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी को 7वें नंबर पे रखा क्योंकि जब तक हम पहली 6 बातों में परिपक्व नहीं हो जाते तब तक स्वदर्शन चक्रधारी का अनुभव नहीं कर पाती। तो पहली बात थी स्वस्वरूप, अर्थात आत्म भाव की गहन अनुभूति, स्पष्ट अनुभूति, मेहनत वाली नहीं लेकिन नेचुरल अनुभूति कि मैं हूं ही आत्मा, शरीर तो मेरा है और मेरे और मैं में अंतर होता है। फिर स्वधर्म की अनुभूति, आत्मा के जो मूल 7 गुण हैं वही आत्मा के धर्म है, तो एक एक गुण की गहराई, शांति में डूबने का गहन अनुभव, प्रेम की गहराई में जाने का अनुभव, पवित्रता का गहन अनुभव। और फिर तीसरा स्वदेश अर्थात सेकंड में घर जाना और फिर देह में आना। जब चाहे घर की अखंड मौन और निशब्दता का अनुभव करना और जब चाहे देह में आके कर्म करना। फिर सुकर्म, जब हम योग युक्त होके कर्म करते हैं तो वो हमारी सुकर्म बनते हैं। तो योग युक्त अवस्था में कर्म और जिन कर्मों में धर्म शामिल है वो सुकर्म है। कर्म और धर्म का बैलेंस, योग और कर्म का बैलेंस, तो ये सुकर्म। और फिर स्व लक्ष्य, लक्ष्य की अनुभूति। लक्ष्य जैसे सामने, जैसे बाबा कहते थे कि कपड़ा खूंटी पे टंगा होता है, ऐसे सतयुगी शरीर सामने खूंटी पे है, उतारा और पहना। और फिर लक्षण, जितने भी दैवी गुण है वो हमारे श्रेष्ठ लक्षण है। तो इन छह सीढ़ियों को अच्छे से पार करने के बाद हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। एक बाबा का भूख का संदेश है 5/10/2011 का, जिसमें बाबा ने कहा कि शरीर को हेल्दी बनाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लेकिन बाबा आप बच्चों को ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपका मन मजबूत होगा, व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे, फुल स्टॉप तुरंत लग जाएगा, क्यों क्या सारे प्रश्न गायब हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे पंचमुखी ब्रह्मा का गायन है, ऐसे आप बच्चे भी पांच स्वरूपों वाले हैं। और उसमें बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी बनने के जो पांच स्वरूप है उनका वर्णन किया। पहला स्वरूप है मैं चमकता हुआ सितारा हूं। तो जब हम चमकते हुए सितारे परम धाम में थे, वो भी हमारा बहुत सुंदर अनादि स्वरूप है। झाड़ के चित्र में हम देखते हैं करोड़ों आत्माएं, लेकिन हम आत्माएं अति विशेष, निराकारी दुनिया में भी हमारा स्थान, हमारा स्वरूप औरों से श्रेष्ठ है। जैसे चांद के नजदीक कोई बहुत तेजस्वी सितारा होता है, सबका ध्यान आकर्षित करता है, तो झाड़ के चित्र में हम नियरेस्ट और डियरेस्ट है। एकदम परम सितारे के नजदीक चमकने वाले तेजोमय सितारे। तो हमारा अनादि स्वरूप कितना महान है। भले हम अनादि स्वरूप में बहुत कम समय रहते हैं, क्योंकि हीरो पार्टधारी ज्यादा समय रंगमंच पे अपने कदमों के निशान छोड़ते हैं, लेकिन अनादि स्वरूप में भले हम कम समय में रहते लेकिन बाप के बिल्कुल करीब, बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी बन करके रहते हैं। और फिर दूसरा स्वरूप है आदि रूप, देवताई रूप। ये देवताई रूप भी साकारी जगत में सर्वश्रेष्ठ रूप है। यूं तो 850 करोड़ आत्माएं रंगमंच पे खेल करती हैं, लेकिन देवताओं की शान ही निराली है। चाहे वो चेतन में हैं, चाहे उनकी जड़ यादगार है। चेतन में हैं तो सारी पृथ्वी के मालिक, तो प्रधान सुखों को भोगते हैं। तन से भी सुंदर, मन से भी सुंदर, संबंध भी सुंदर, प्रकृति भी सुंदर, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। दो ताज धारी देवताओं की बाबा ने दो मुख्य विशेषताएं बताई हैं, एक दिव्य गुणों से संपन्न। बाबा ने कहा था कि संगम युग में आपको नौ लखा हार नहीं मिलता, लेकिन नौ लखा हार दिव्य गुणों के श्रृंगार के आगे कुछ भी नहीं। बाबा आपके रोम रोम को, हरेक इंद्री को सजा रही, गुणों के गहनों से, धारणाओं के गहनों से, तो ये हमारी असली संपदा है। सद्गुण ही संपदा है। संगम युग में हम उस सद्गुण रूपी संपदा से बहुत धनी हैं। सबसे अधिक धनवान हम, सबसे गरीब वही है जिसके पास सद्गुण नहीं। जहां सद्गुण वहां संपत्ति नाना, जहां अवगुण वहां विपत्ति विनाना। जहां सद्गुण है वहां संपदा आती है, जहां अवगुण है वहां विपत्तियां आती है। और देवताओं की दूसरी विशेषता है दाता, देने का भाव। इसलिए देवताओं का हाथ देने की पोज में दिखाते हैं। कितना सुंदर पोज है, कितना आकर्षित करता है। इस पोज के दर्शन करने के लिए लोग मंदिरों में जाते हैं। एक ये वाला पोज होता है मांगने वाला, अगर कोई दिख भी जाए तो लोग मुंह फेर लेते हैं। और कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, जब वो मांगता है तो उसका हाथ नीचे हो जाता है और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। तो देवता साकारी शरीर में तो सतयुग में होंगे, लेकिन देवताओं की क्वालिफिकेशन तो अभी हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में। तो हमको ये देखना है कि हमको देवता बनना है, इसलिए कभी भी हमारा हाथ ऐसे ना हो। हाथ ऐसे नहीं होता पर मन हो जाता है, पहले ये करे तो मैं करूं, पहले ये बदले तो मैं बदलूं, ये सेल्वेशन मिले तो मैं सेवा करूं। ये भी एक प्रकार का भिखारीपन। अनकंडीशनल गिविंग, बिना किसी शर्त के देना, उसको कहते हैं दाता। तो ये हमारा दूसरा स्वरूप, देना देना और देना। स्थूल भी देना, सूक्ष्म भी देना, बिना रिटर्न लिए देना, अच्छे से अच्छा देना। क्योंकि हम जानते हैं देना लेना होता है, वास्तव में हम देते नहीं हैं, लेते हैं। एक देते हैं और हजार गुना पाते हैं, लाख गुना पाते हैं, करोड़ गुना पाते हैं। अब जैसे मैं एक बार ओम शांति बोलती हूँ तो सभा में आप अगर 3,000 भाई बहने बैठे हैं तो मुझे रिटर्न में कितनी ओम शांति मिली? 3,000 मिल गई। तो मेरा एक 3,000 गुना होके लौट आया, तो मैंने दिया का लिया ही लिया। अच्छा, अमृत वेले हम संकल्प करते हैं कि विश्व की सर्व आत्माओं को शांति मिले, तो हमने 850 करोड़ आत्माओं को शांति का दान दिया। तो बदले में कितनी गुनी शांति होके हमारे पास लौटेगी? 850 करोड़ गुना होकर के लौटेगी। तो हमने दिया थोड़े लेकिन लिया। प्रकृति को हम एक बीज देते हैं और बदले में वो कभी 100 गुना कभी 1,000 गुना रिटर्न करती है। तो देना वास्तव में लेना है। तीसरा हमारा स्वरूप है पूज्य स्वरूप। संगम युग में हम जो महान कर्तव्य करते हैं और सतयुग में विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं, तो उसके बाद ये संसार हमारे यादगार चित्र बनाता है, यादगार मॉडल बनाता है। लेकिन वो मॉडल भी कितने आकर्षक होते। ऐसे तो दुनिया में महान आत्माओं की यादगारें बनती हैं, धर्म पिताओं की, महान आत्माओं की, बड़े बड़े पुण्य आत्माओं के, लेकिन उनकी यादगारों में और हमारे पूज्य स्वरूप में रात दिन का अंतर। हमारे पूज्य रूप कितना डेकोरेटेड होता है, मंदिर में कितना विधिवत स्थापना होती है, कितनी तरह के भोग लगते हैं, कैसे कैसे आरती होती है, कैसे कैसे कीर्तन होता है, मूर्ति की पूजा करने वाला कितनी शुद्धि की पालना करता है, कहीं छत्र है तो कहीं मुकुट है तो कहीं सिंहासन है तो कहीं पांव के नीचे रतन जड़ी चौकी है, कितने गहने हैं, और दूसरी तरफ यादगारें देखिए, स्टैचू बना देते हैं, कहीं भी खड़ा कर देते हैं, मिट्टी धूल गिरती रहती है, वातावरण की गंदगी गिरती रहती है, धूप में भी खड़े रहते हैं, आंधी बरसात में भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। लेकिन देवताओं को तो बहुत सुंदर मंडप या बहुत सुंदर छत के नीचे रखा जाता है और जगह भी कितनी विशाल दी जाती है, कई कई मंदिर तो कई कई एकड़ तक फैले रहते हैं, कितने कितने दर्शन होते हैं, दिन में 4 दर्शन 8 दर्शन, कितनी बार ड्रेस बदली जाती है। तो ये हमारा पूज्य स्वरूप है। और उसके बाद चौथा है ब्राह्मण स्वरूप, वर्तमान स्वरूप। ब्राह्मण अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। ऐसे तो अष्ट शक्तियों का चित्र हमारी किताब में है, लेकिन बाबा कहते हैं शक्तियां केवल 8 नहीं, बहुत शक्तियां। हाँ, ये 8 मुख्य हैं, इनको अगर हम धारण कर लें तो बाकी शक्तियां पीछे पीछे आ जाएंगी। भूलने की शक्ति, याद करने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, रोकने की शक्ति, मोड़ने की शक्ति, संग्रह की शक्ति, संग्राम की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां। तो ब्राह्मण अर्थात माया जीत, क्योंकि शक्तियां ही तो माया पर विजय प्राप्त कराती। और जब हम ब्राह्मण रूप से फिसल करके क्षत्रिय रूप में आ जाते हैं तो फिर युद्ध करना पड़ता है, परिस्थितियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। तो क्षत्रिय अर्थात युद्ध रत और ब्राह्मण अर्थात माया जीत। ब्राह्मण शक्तियों को समय पर यूज करता है और क्षत्रिय शक्तियां होते हुए भी समय पे यूज नहीं कर पाता। ज्ञान के पॉइंट भी हमारी शक्ति है, गुण भी हमारी शक्तियां बन जाते हैं जब लगातार हम किसी गुण को धारण करते हैं। जैसे पवित्रता एक गुण है, लेकिन लंबे काल की पवित्रता की धारणा हमारी शक्ति बन जाती है। लंबे काल की ज्ञान की धारणा, ज्ञान की स्मृति हमारी शक्ति बन जाती है। लेकिन समय पर यूज करना ये आना चाहिए, और समय पर अगर हम यूज नहीं करते, चूक जाते हैं, तो शक्ति होते भी फिर हार हो जाती है। जैसे एक बार एक परिवार में एक माता और एक भाई युगल ज्ञान में चलते थे, तो युगल तो ज्ञान में बहुत पक्के थे, माता ठीक ठीक चल रही थी। तो एक दिन उनका पड़ोसी आया, कहता हमको सीढ़ी दे दो। तो माता तो देना नहीं चाहती थी, लेकिन भाई जी बड़े उदार दिल वाले थे, तो उन्होंने कहा दे देते हैं। तो माता ने कहा पहले पूछो सीढ़ी लौटाएंगे कब। तो उसने कहा काम होते ही मैं कल लौटा दूंगा, लेकिन सीढ़ी नहीं लौटाई। तो ये माता ने भाई को बोला कि देखो सीढ़ी तो आई नहीं। अब भाई तो थोड़ा भोला भोला था, तो उसने कहा कोई बात नहीं है, ड्रामा में जब आई थी तब आ जाएगी। और जैसे ही उसने ये बोला तो माता तो लाल पीली हो गई और खूब हंगामा हुआ, और उसके बाद वो भाई आश्रम पे आया और बाद में दोनों में सुलह कराई गई। अब देखिए ज्ञान की एक पॉइंट है ड्रामा, लेकिन ये कब और कहां यूज करना है। तो हमारे पास ज्ञान की पॉइंट है, वो हमारी शक्ति है, लेकिन जब कोई व्यक्ति क्रोध में है तो हमें कौन सा पॉइंट यूज करना है ताकि उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो, इस आधार पर हम ब्राह्मण बनते हैं। और अगर समय पे यूज नहीं किया तो फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। ब्राह्मण माना ताज तिलक और तख्त नशीन, ताज है जिम्मेवारी का, तिलक है सप्तः स्मृति का, और तख्त है बाबा का दिल तख्त। क्षत्रिय माना अभी अभी ताज तख्त तिलकधारी, अभी अभी हलचल में, अभी अभी डावाडोल। तो बाबा ने हमको ब्राह्मण बनाया है, क्षत्रिय नहीं बनाया। और ब्राह्मण माना सदा मौज में, सीरत और सूरत सदा रूहानी। लेकिन क्षत्रिय माना कभी मौज में और कभी मुंझे हुए, कभी लक्ष्य और लक्षण एक समान और कभी दोनों में अंतर, कभी करनी और कथनी एक समान और कभी दोनों में अंतर। तो बाबा ने कहा ये चेक करना है कि सारा दिन में ब्राह्मण कितना समय रहे, मौज में कितना समय रहे, और सारा दिन में क्षत्रिय कब कब बन गए। और चेक करने के बाद चेंज भी करना है। चेंज करना माना परिवर्तन शक्ति को यूज करना। शक्ति है, लेकिन शक्ति होते हुए भी कई बार परिस्थिति आई, शक्ति है पर यूज नहीं हुई, तो शक्तिशाली तो नहीं कहेंगे। तो समय पर शक्ति को यूज करना और परिस्थिति को पार करना, ये है ब्राह्मण की विशेषता। और उसके बाद है फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता माना डबल लाइट, लाइट माना हल्का, माना बोझ नहीं। लेकिन कभी कभी माया आकर्षण में लाकर के बोझ का टोकरा सिर पे रख देती है, पराधीन बना लेती है। या तो है स्वराज्य अधिकारी या तो है पराधीन। पराधीन माना परवश, और जब परवश हो जाते हैं तो भाषा कौन सी होती है, मैं चाहता तो नहीं था पर पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, मैं चाहता नहीं था पर पता नहीं बोल निकल गया, पता नहीं कर्म ऐसे हो गया, पता नहीं संकल्प ऐसे चल गया। तो ये पता नहीं की स्थिति परवश की स्थिति है। राजा माना स्वतंत्र, और नहीं तो पराधीन। तो बाबा ने कहा पराधीन के संकल्प कैसे होंगे, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे तो ठीक नहीं है, क्यों क्या कैसे। तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं मूंझने की स्थिति। और जब मूंझने की स्थिति आए तो उसके लिए क्या करना है, जब मूंझ जाए, अंदर में उलझन आए, द्विधा आए, उधेड़ बुन आए, दिस और दैट, निर्णय ना हो पाए, तो क्या करना है। तो बाबा ने कहा अपना पहला पाठ याद करो। हम ब्राह्मणों का पहला पाठ क्या है, मैं कौन हूं? इसका उत्तर ये है कि मैं आत्मा तो हूं, पर कौन सी आत्मा। संडे की मुरली में बाबा ने एक स्वमान के ऊपर चिंतन करने की बात कही थी, मैं नूरे रतन। नूरे रतन की विशेषता क्या है, नूरे रतन में क्या क्या गुण है, नूरे रतन का कर्तव्य क्या है। तो ऐसे ही मैं कौन हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ, मैं कौन हूँ, ये याद करो। बाबा ने कहा रोज की मुरली में तो बहुत स्वमान आते, तो जब आप उनको याद करेंगे, उनके स्वरूप में टिकेंगे, तो मूंज खत्म हो जाएगी, उलझन खत्म हो जाएगी, मोज का अनुभव होगा। फिर फरिश्ता माना डबल लाइट केवल परिस्थितियों के समय नहीं, लेकिन रोजमर्रा की दिनचर्या में एक दो के संबंध संपर्क में आते, भाव स्वभाव में भी लाइट रहना, हल्का रहना। हमारा भाव स्वभाव लाइट है, हल्का है। संबंध भी सबके साथ हमारे हल्के, संपर्क में भी हम सबके साथ हल्के हैं। कोई बात भारी करने वाली आती नहीं है, आती है तो हम उसको इग्नोर कर देते, हम सबके साथ लाइट रहते। ये फरिश्ते का रूप। बाबा ने कहा जो लाइट चीज होती है ना, वो सबको पसंद आती है। आजकल तो जमाना ही लाइट वेट का है, हर चीज लाइट वेट की चाहिए। बाजार में अगर कोई चीज भारी हो तो पसंद ही नहीं आती। तो जैसे लाइट वेट की चीजें पसंद आती हैं, आपसी रिलेशन में भी हम लाइट, भारी करने वाली बात को भी हम लाइट बना देते। बाबा ने कहा कि 95% आपसी संबंध लाइट होने चाहिए। 5% की बाबा मार्जिन दे रहे, लेकिन वो 5% भी कवर कर लो। कई बार कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लाइट रहते हैं, लेकिन दूसरे वाले हमें समझते ही नहीं है। तो इसके लिए भी बाबा ने कहा कि अगर आप लाइट हैं तो अपनी विल पावर से अपनी लाइटनेस की पहचान दूसरों को करवाओ, ये भी आपको ही करना है। और इसके लिए अपनी वृत्ति और अपने कर्म को परिवर्तन करने की जरूरत। और वृत्ति और कर्म को परिवर्तन करने के लिए एक गुण की आवश्यकता है, वो है सहनशीलता। तो जो हमारे लाइटनेस को नहीं पहचानते वो भी पहचान जाएंगे, पर इसके लिए सहनशीलता चाहिए। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। बताते हैं कि जापान का एक राजा था यामातो, उसका मंत्री था, जिसका 5 पीढ़ियों से परिवार इकट्ठा था। एक छत के नीचे 1000 लोग इकट्ठा भोजन करते थे। तो राजा एक दिन मंत्री के घर गए, देखने गया सब लोग इकट्ठे कैसे रहते हैं। तो मंत्री के परिवार ने उसकी बहुत आवभगत की। तो राजा ने पूछा भाई आपके इकट्ठे रहने का राज क्या है। तो एक कागज लेकर के उस बूढ़े मंत्री ने उस कागज पर 3 बार लिखा, सहनशीलता सहनशीलता सहनशीलता। और फिर कहा कि राजन अगर सहनशीलता हो तो एक परिवार क्या, सारा विश्व भी एक परिवार बन सकता है। तो अगर हमारे में सहनशीलता हो और हमारी वृत्ति और कर्म श्रेष्ठ हो तो हमारे लाइटनेस को लोग अपने आप पहचानेंगे। फिर फरिश्ते की तीसरी विशेषता है फरिश्ता अर्थात ना दे के संबंधों से रिश्ता। बाबा ने एक मुरली में हंसी हंसी में कहा था कि ऐसे तो बच्चे कहते हैं हम दे के संबंधों से परे हो गए, दे के संबंधों से परे हो गए, लेकिन जब कोई ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति आती है ना तो पहले वो काका चाचा मामा ही याद आते हैं। तो बाबा कहते हैं अरे जो रिश्ते मर गए थे वो दोबारा जिंदा हो गए। तो परिस्थिति किनारे का अनुभव कराने के बजाय परिवार वालों के सहारे का अनुभव कराती है। अमुक मेरा सहारा है मेरी मदद करेगा, अमुक मेरा सहारा है मेरी मदद करेगा। लेकिन बाबा ने कहा उनसे तो किनारा करना है और सहारा केवल एक बाप को बनाना है। तो ये जो अचानक अटैचमेंट जाग जाती है ये तो आत्मा को कमजोर कर देती है, लौकिक दुनिया में भी अटैचमेंट व्यक्ति को कमजोर करती है। और हम तो हैं ही अलौकिक, हमारी तो ताकत ही डिटैच होना है, हमारी तो सारी शक्ति ही न्यारे रहने में है, न्यारा और प्यार, देह के संबंधों से न्यारा भी और फिर उनका प्यारा भी। लौकिक जीवन में अटैचमेंट कितनी खतरनाक है। एक छोटी घटना मुझे याद आ रही है, एक बार एक महिला के यानी कि एक परिवार में चार पुत्र थे, तीन पुत्र देश सेवा में चले गए, देश से उनका बहुत प्रेम था, हृदय में देशभक्ति थी और देश के ऊपर कुर्बान होने का जज्बा था, और तीनों ही अलग अलग युद्धों में शहीद हो गए। जो चौथा सबसे छोटा बच्चा था वो अभी पढ़ाई कर रहा था और कभी कभार कहता था कि मैं भी देश सेवा में जाऊंगा, मैं भी देश सेवा, बस पढ़ाई पूरी होते ही मैं भी सेना में जाऊंगा। तो माँ सोचती थी कि मेरा चौथा बेटा भी चला जाएगा, और जैसे तीन शहीद हो गए कहीं ये भी ना शहीद हो जाए। तो अंदर में सोचती थी कि ये तो मेरी आंखों के सामने ही रहना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो अचानक वो छोटा बच्चा एक दिन बीमार पड़ गया, बुखार, हल्का बुखार आया और उनका फैमिली डॉक्टर आया, दवाई दे गया और बुलाए कल तक ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चा तो कल तक ठीक ही नहीं हुआ। अगले दिन वैद्य फिर आया और उसने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दवा दी और बोला कल तक ठीक हो जाएगा, वो फिर भी ठीक नहीं हुआ और बीमारी और ही बढ़ गई। तो वो स्ट्रॉन्ग दवा देता रहा और बीमारी बढ़ती रही, तो उसके मन में एक डाउट पैदा हुआ, मेरी दवा कभी भी फेल नहीं हुई, तो फेल होने के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र होगा। तो उसने घर के मालिक को कहा, बच्चे के पिताजी को कहा कि कल की रात मैं यहाँ पे आराम करूंगा। कहा ठीक है, मैं रात को बच्चे की निगरानी करूंगा। बोला ठीक है। तो वो अपने कमरे से बच्चे को बार बार उठ करके देखता रहा, तो आधी रात उसने देखा कि एक काली छाया, मतलब अंधेरे में तो वो काला ही दिख रहा था, बच्चे के कमरे में गई, उसकी टेबल से उसने एक चीज उठाई, वाश बेसिन पे गई और फिर वापस टेबल की तरफ गई और फिर अपने कमरे में चली गई। सुबह उठ के उसने बच्चे की टेबल की चेकिंग की, तो क्या देखा कि जिस बोतल में दवा थी उसमें कलर वाला पानी भरा हुआ था, क्योंकि जो माँ थी वो बड़बड़ाती रहती थी कि अगर ये ठीक हो गया तो ये भी चला जाएगा, इससे अच्छा तो ये बीमारी रहे। तो वो रोज उसकी दवाई वाश बेसिन में डाल देती थी और उसकी जगह कलरफुल पानी भर करके टेबल पे रख देती थी। तो ये है अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या करती है, हमारे पाँव में सांकल का काम करती है, पाँव की बेड़ी, पाँव में बंधा हुआ पत्थर जो हमें उड़ने नहीं देता है। तो फरिश्ता कैसे उड़ेगा अगर उसकी अटैचमेंट है, चाहे देह से चाहे देह के संबंधों से। घड़ी घड़ी कोई कोई याद आता रहता है, घड़ी घड़ी किसी की मदद याद आती रहती है, तो वो पांव की शक्ल बन जाती है। तो फरिश्ता माना सर्व बेड़ियों से मुक्त, सांकलों से मुक्त, सर्व बोझ और भार से मुक्त उड़ने वाले। चौथी चीज जो फरिश्ता बनने में रुकावट डालती है, एक होता है देह भान, बाबा ने कहा ये हल्की चीज है, और एक होता है देह अभिमान, ये बहुत सूक्ष्म है। और ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा में ये सूक्ष्म देह अभिमान कहाँ है, परखने के लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। परख शक्ति, थोड़े दिन पहले भूख का एक संदेश आया था, तो उसमें बाबा ने पूछा था कि अष्ट शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है। बाबा ने कहा ऐसे तो आठों शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है और सहन शक्ति को हमने सबसे पहले रखा है, लेकिन सहन शक्ति से भी ज्यादा सूक्ष्म और महत्वपूर्ण कौन सी। और फिर बाबा ने खुद ही उत्तर दिया था कि सबसे महत्वपूर्ण है परख शक्ति, क्योंकि परख शक्ति के अभाव में ब्राह्मण परिवर्तन नहीं हो पाते, ब्राह्मण धोखा खा जाते हैं। जैसे सीता इतनी पूजनीय देवी थी, वो भी परख शक्ति के अभाव में बंधन में बंध गई। हिरण सोने का नहीं होता, वो परख ही नहीं पाई। और दूसरा, जब हिरण ने राम की आवाज में बोला हाय लक्ष्मण, तो भी वो परख नहीं पाई। बोल तो हिरण रहा था पर सीता भ्रमित हो गई कि राम जी बोल रहे हैं, राम जी मुसीबत में है, राम जी पे संकट आया है, राम जी को लक्ष्मण के सहयोग की जरूरत। आजकल भी आपने देखा होगा कई लोग भगवान की आवाज में बोल रहे हैं, तो बेचारी भोली वाली सीताएं फंस जाती, पहचान नहीं पाती कि ये राम की आवाज नहीं। और फिर रावण की कारागार में चली जाती। तो नकल करके हिरण ने बोला, राम तो कभी सहयोग मांगता ही नहीं किसी से, राम तो कभी संकट में आता ही नहीं है, वो तो संकट मोचन, सबके संकट दूर करने वाला है। पर वो भोली वाली सीता भ्रमित हो गई और जेल में चली गई। तो परख शक्ति, भान कौन सा है और अभिमान कौन सा है। अभिमान, ज्ञान का अभिमान, मैं बहुत ज्ञानी हूं। बुद्धि का अभिमान, मेरी बुद्धि बहुत तेज है। अच्छे स्वभाव का अभिमान, अच्छे संस्कारों का अभिमान, किसी गुण का अभिमान, कला का अभिमान, विशेषता का अभिमान। और अभिमान है, इसको परखने के लिए भी बाबा ने एक कसौटी दी है। अभिमान को कैसे परखेंगे? अगर हमारे में अभिमान है तो हमको अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आएगी। जहां अभिमान तहां अपमान। मुझे आगे नहीं रखा गया, मेरी बात नहीं मानी गई, मुझे ऊंची जगह पे नहीं बिठाया गया, अपमान की फीलिंग। मेरा योग्य सत्कार नहीं हुआ, मुझे योग्य मान शान और नाम नहीं मिला, अपमान की फीलिंग। क्योंकि अभिमान अपमान अनुभव कराता है। और जो नम्र है वो हर हाल में खुश, मौज में, क्योंकि पता है संगम युग में हम सब वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी, और वनवाह में भी, तो वनवाह में कोई सुविधाएं थोड़े होती है। और जो विश्व सेवक वो किसी चीज की मांग नहीं थोड़े करता है, सेवक को केवल सेवा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बाबा जी का अभिमान तब आता है जब मैं और मेरेपन का दरवाजा खुल जाता है। तो इस अभिमान से बचे कैसे? परख तो हो गई, पर इससे बचने का उपाय क्या है? बाबा ने कहा केवल एक छोटा सा शब्द इससे बचने का, बिल्कुल छोटा सा लेकिन बहुत ही कारगर है। दवा की बूंद तो एक ही है लेकिन मर्ज को जड़ से खत्म कर देती है। शब्द तो एक ही है लेकिन अभिमान के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को भी मिटा देता है। वो एक शब्द है, करावन हार करवा रहा है, मैं निमित्त हूं। बस ये एक शब्द अभिमान को काटने वाली तेज धार तलवार है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने जीवन भर इस एक शब्द को अच्छे से धारण रखा, मैं नहीं बाबा कर रहा है, बाबा करवा रहा है, मैं निमित्त हूं। बस इसी ने बाबा को फरिश्ता बना दिया। मैं निमित्त करणहार, बाबा करावनहार। तो बाबा ने कहा एक शब्द तो बहुत सरल है। तो ये हमारे पांच स्वरूप हैं। इन पांच स्वरूपों में हम अपने मन और बुद्धि को निरंतर अनुभूति जन्य रखते हैं, सिमरण नहीं। संडे की मुरली में बाबा ने कहा था भक्तों का होता है सिमरण, आपका सिमरण नहीं है, आपकी अनुभूति है। आप उसके स्वरूप में टिकते हो, आत्म स्वरूप में टिकते हो, देवताई स्वरूप में टिकते हो, फरिश्ता स्वरूप में टिकते हो। तो जो स्वदर्शन चक्रधारी है वही छत्रधारी है। 21:1 87 की एक मुरली है जिसमें बाबा ने बोला चक्रधारी ही छत्रधारी है। तो जो स्वदर्शन चक्र को धारण करेगा वही भविष्य में विश्व चक्रवर्ती बनेगा। यहां चक्र भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनाएगा। और बाबा ने कहा यहां का जो चक्र है, जो चक्र धारण करते हो, उसकी निशानी क्या है? संगम युग में ही आपके चारों ओर लाइट का चक्र आ जाता है। ऐसे कोई देवताओं की तरह से विजिबल प्रकाश नहीं लेकिन चेहरे पे रूहानियत, हल्कापन, पॉजिटिविटी, उमंग उत्साह, उसके कारण जो ओरा बनता है हमारे चारों ओर व्हाइट व्हाइट, संगम युग का वो चक्र है। स्वदर्शन चक्रधारी संगम युग में लाइट के चक्रधारी बन जाते हैं। तो जो लाइट का चक्र धारण करेगा, स्वदर्शन चक्र धारण करेगा, वो चार चक्रों से मुक्त हो जाएगा। चार चक्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 देह की स्मृति का चक्र, देह की व्यक्त स्मृतियां बहुत होती हैं, देह का खाना, देह का पीना, देह को साधन सुविधाएं, इनसे मुक्ति। दूसरा लौकिक अलौकिक संबंधों की स्मृति से मुक्ति। तीसरा अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कार के बंधन से मुक्ति। और चौथा प्रकृति के अनेक आकर्षणमय पदार्थों के चक्र से मुक्ति। तो ये निशानी है स्वदर्शन चक्रधारी सो भविष्य चक्रवर्ती महाराजा की वर्तमान समय। लेकिन एक दूसरा चक्र भी है, वो माया का चक्र है। तो जो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते वो माया के चक्र में आ जाते हैं। और माया के चक्र वाले की निशानी क्या होगी? वो कर्जधारी नहीं लेकिन बोझधारी होगा, वो कर्जदार और मर्जदार होगा, और वो हर बात में क्यों और क्या के प्रश्न पैदा करेगा, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो ये जो क्यों और क्या के प्रश्न हैं, इनके भी तीन स्तर हैं। पहला अपने प्रति, दूसरा ब्राह्मण परिवार के प्रति, और तीसरा स्वयं सर्वशक्तिवान बाप के प्रति। अपने प्रति उसके मन में क्या क्वेश्चन होंगे, जो माया के चक्रों में फंसा हुआ है, जो सुदर्शन चक्रधारी नहीं, उसकी निशानी अपने प्रति वो चार प्रश्न करता रहेगा। पहला, क्या मैं सफलता मूर्त बन पाऊंगा? दूसरा, क्या मैं समीप आत्मा बन सकूंगा? तीसरा, क्या मैं सबके साथ स्वभाव संस्कार मिला पाऊंगा? चौथा, क्या मैं स्वयं संतुष्ट रह पाऊंगा? अपने आप से बार बार वो प्रश्न करता रहेगा, क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ऐसा हो पाएगा। फिर दूसरा, ब्राह्मण परिवार के प्रति उसके मन में प्रश्न होंगे, ये तीन प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, ये मेरे से ऐसे क्यों चलते हैं? इसका विस्तार तो बहुत है, ये मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं, ये मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, ये मुझे बैठने की यही जगह क्यों देते हैं, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो ये ब्राह्मण परिवार के प्रति प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न, ये मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ाते, ये मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं देते ब्राह्मण परिवार के प्रति। और तीसरा, ये मुझे मान शान की प्राप्ति क्यों नहीं करवाते। ये तीन प्रश्न हमेशा ब्राह्मण परिवार के प्रति। जो माया के चक्र को धारण करता है उसके ये तीन प्रश्न ब्राह्मण परिवार के प्रति। और फिर भगवान के प्रति पांच प्रश्न। अगर बाबा आप सर्वशक्तिवान हैं तो मेरी बुद्धि को अच्छा क्यों नहीं बना देते? अगर आप नजर से निहाल करने वाले हैं तो आप मेरी तरफ अपनी नजर क्यों नहीं करते? अगर आप पिता हैं तो मैं जो हूं जैसा हूं आपका ही तो हूं, तो आप मेरी नैया पार क्यों नहीं लगाते? अगर आप त्रिकालदर्शी हैं तो मेरे सब जन्मों को जानते हुए अपनी शक्ति से मुझे ऊंचा पद क्यों नहीं प्राप्त करवा देते? और अगर आप दाता हैं तो मैं जो चाहता हूं वो मुझे प्राप्त क्यों नहीं करवा देते? ये पांच प्रश्न भगवान के प्रति। तो बाबा ने कहा, ऐसी आत्माएं, एक तो 63 जन्मों के बोझ से बोझिल है, वो बहुत बड़ा बोझ है, और ऐसी आत्माएं और बोझ चढ़ा लेती हैं। कैसे? भगवान जो इतनी सुंदर पालना दे रहा है, इतना प्यार, इतना ज्ञान, तो हम बच्चों का फर्ज है कि हम उसको रिटर्न दें, लेकिन हम तो रिटर्न में उल्हाने दे रही हैं, फर्ज अदा ही नहीं कर रही हैं, तो हम पे कर्ज चढ़ जाता है और ये कर्ज कमजोरियों का मर्ज बन जाता है। तो ऐसी आत्मा कर्जदार और मर्जदार बन जाती है, कमजोर बन जाती है, बोझिल बन जाती है, भारी बन जाती है, फिर उसके शब्द क्या होते हैं, योग लगता नहीं है, योग में अनुभूति नहीं होती है, मंजिल बड़ी दूर दिखाई देती है, ये माया के चक्र वाली आत्मा की निशानी। तो बाबा भी ऐसे बच्चों को देख के रहम करते हैं और रहम दिल बाप ऐसे बच्चों को कहते हैं, बच्चे आप कमजोर हैं तो कोई बात नहीं है, आप एक छोटा सा काम करो। कितनी भी कमजोर आत्मा हो, वो छोटा सा काम तो कमजोर से कमजोर आत्मा भी कर सकती है। आप कहते हो ना योग नहीं लगता है, कोई बात नहीं है, आप केवल एक सेकंड कितना होता है, केवल एक सेकंड सच्चे दिल से सर्व संबंधों से बाप को याद करो, केवल एक सेकंड सच्चे दिल से सर्व संबंधों से। तो जब सच्चे दिल से सर्व संबंधों से बाप को याद करेंगे तो उस याद में जो अनुभूति होगी वो बार बार आपको याद की तरफ खींचती रहेगी। और एक सेकंड आपने सच्चे दिल से बाप को याद किया तो उसके रिटर्न में बाप आपको पद्म गुणा मदद करेंगे, यानी कि एक सेकंड याद की हिम्मत का कदम आपने बढ़ाया तो पद्म गुणा मदद बाप से मिलेगी। बाबा ने कहा इससे सरल और क्या हो सकता है, एक सेकंड का पुरुषार्थ इससे सरल और क्या हो सकता है। और फिर बाबा ने हंसी हंसी में कहा कि क्या आपकी तरफ से योग भी बाबा लगाए, बहुत नाजुक बच्चे हैं तो कई बार नाजों से चलते हैं। बाबा ने कहा इतने नाजुक मत बनो, नाजों से मत चलो, राजों से चलो, राजयुक्त बनो, युक्ति युक्त बनो, लेकिन नाजुक मत बनो। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो विश्व के चक्रवर्ती राजा बनेंगे, और अगर माया के चक्रों में आ गए तो कर्जदार और मर्जदार बन जाएंगे। इसलिए हम बच्चों को सावधान रहना है। बाबा की एक और मुरली है जिसमें एक बच्चे ने बाबा से सवाल पूछा कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा, राजा बनूंगा, साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। तो उसके लिए भी बाबा ने कहा कि बाबा को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी दिन भर की दिनचर्या को देखो और खुद ही रिजल्ट निकालो। तो बाबा ने कहा आप आत्मा की तीन शक्तियां हैं जिनको आप अपने मंत्री कह सकते हो, जैसे आजकल भी मंत्री होते हैं जो राजकार्य में सहयोगी बनते हैं। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे लेकिन जो परिवार के सदस्य होंगे वही साथी बन के राजकार्य में सहयोग देंगे। और यहाँ संगम युग में आपके तीन साथी हैं, सहयोगी हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा ने कहा सिर्फ एक दिन की दिनचर्या में देखो कि क्या ये तीनों मेरे साथी मेरे कहे में हैं, मेरी बात मानती, क्या मैं मन को जब चाहूं जहां चाहूं जितनी देर चाहूं वहां लगा सकता हूं, या मन मनमानी करता है, लगाता कहीं हूं लग कहीं जाता है, बिठाता कहीं हूं उठ के भाग कहीं जाता है, क्या बुद्धि कहना मानती है, बुद्धि आज्ञाकारी है या बुद्धि भटकती है। बुद्धि को मैं दृश्य कोई दिखाता हूं और वो कोई अन्य दृश्य इमर्ज कर लेती है, और संस्कार कैसे है, पवित्र योगी संस्कार बन गई। अगर ये तीनों शक्तियां वर्तमान समय आपके अधीन है तो आप राजा बनेंगे, स्वराज्य अधिकारी हैं आप, क्योंकि आपको अपने साथियों को चलाना आता है। अगर कहती हैं कि बाबा कुछ समय तो कहना मानती हैं कुछ समय कहना नहीं मानती, तो बाबा ने कहा फिर आप राजा भी कुछ समय बनेंगे और कुछ समय नहीं बनेंगे। कई कहते हैं कि बाबा बिल्कुल ही कहना नहीं मानती, तो बाबा कहते हैं फिर तो आपके राज्य अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में आने के संस्कार, अर्थात प्रजा बन गए के संस्कार। कई कहते हैं कि बाबा अभी तो कहना नहीं मानती लेकिन अंत में कहना मान लेंगी तो बाबा ने कहा फिर राज्य भी अंत में मिलेगा, त्रेता के अंत में थोड़े काल का राज्य मिलेगा। तो अगर बहुत काल का राजा बनना है, चक्रवर्ती राजा बनना है, तो एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरा स्वराज्य अधिकारी बनना है, अर्थात मन बुद्धि संस्कार का कंट्रोलर बनना है, कमांडर बनना है, इनके ऊपर राज्य चलाना है। ओके।